नहीं करूंगा तुम्हें खुद से और अंशु से दूर, पर उसके लिए तुम्हें चुप होना होगा। अब तुम्हारी आंखों से आंसू की एक बूंद भी बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर अब तुम्हारी आंखों से एक बूंद आंसू भी निकला तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद से, इस घर से और अंशिका से दूर कर दूंगा। उसने हल्की सख्ती से अपनी बात कही। उसकी बात सुनकर आरवी ने झट से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं अब नहीं रोऊंगी। अब तो आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे ना? वो अब भी रुआंसी होकर कह रही थी। शान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे छोड़कर पीछे हट गया। तो आरवी डर गई, आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। वो आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उसे देखने लगी। शान अब वहां से उठकर टेबल की तरफ बढ़ गया, जग उठाकर ग्लास में पानी डाला, फिर उसकी तरफ मुड़ गया। तो उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर उसने उसे घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? अभी तुम्ही ने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। मैंने तुम्हें रोने को मना किया था, फिर भी तुम रोने लगी। लगता है तुम इस घर से जाना चाहती हो।
नहीं, मैं नहीं रो रही, आरवी ने घबरा कर कहा और अपनी आंसुओं को पोंछ लिया। ये देख शान उसके पास आ गया। उसने ग्लास उसके तरफ बढ़ाया तो आरवी उसे असमंजस में देखने लगी। शान ने ग्लास उसके लबों से लगाकर सख्त आवाज में कहा, पानी पियो। उसने साथ ही उसे घूरते हुए चिताया तो आरवी ने झट से मुंह खोल दिया। उसे पूरा ग्लास पानी पिलाने के बाद शान उसके पास बैठ गया। आरवी अब भी उसे ही देख रही थी। शान ने उसकी हथेलियों को थाम लिया तो आरवी कभी उसे तो कभी उसके हाथों में कैद अपनी हथेलियों को देखने लगी। पहले तो तुम एकदम शांत हो जाओ, कोई तुम्हें यहाँ से, मुझसे, अंशिका से या तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करेगा। मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मुझे चीट करने के बारे में तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे सारी बातें तो नहीं पता, पर इतना जानता हूँ कि वेहान पागल है तुम्हारे पीछे, आज से नहीं, कॉलेज टाइम से। उसकी ये बात सुनकर आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, चेहरे पर डर पसर गया। वो घबराई नजरों से उसे देखने लगी तो उसने बड़े आराम से आगे कहा, रिलैक्स, मुझे तुम पर विश्वास है। जानता हूँ कॉलेज में वो तुम्हें बहुत तंग करता था, पर तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना था। तुम्हारा बस एक ही सपना था, अपनी मम्मी की मदद करना, उनका सहारा बनना। नहीं जानता कि कॉलेज खत्म होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम तीन साल जिस लड़के की परछाई से भी दूर भागती रहीं, उसी से शादी करने के लिए तुमने हाँ कह दी। सच पूछो तो जानना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम पर। अगर तुमने कोई फैसला लिया था तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। इतना कहकर शान चुप हो गया और मन ही मन बोला, सॉरी, झूठ कहा तुमने, क्योंकि अगर सच बताता तो ये बताना पड़ता कि मैं रश्मि से मिला था इस बारे में बात करने के लिए, और यही मैं नहीं चाहता। इसके बाद उसने फिर से आरवी को देखा और गंभीरता से आगे बोला, जानता हूँ हमारी शादी के बाद से तुमने मुझे ही अपना सब कुछ माना है। आज जो हुआ वो भी पता है मुझे। तुम न तब गलत थी, ना ही आज जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर था। इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा। तो इस डर को हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दो। ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, और तुम हमेशा यहीं रहोगी हमारे साथ। तुम मेरी वाइफ हो और मुझे अपनी वाइफ पर पूरा विश्वास है, तो तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। मेरे रहते अब कोई तुम पर अपनी बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। उस विहान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हें छूने की? ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से आग जैसे धधकने लगी, जिससे आरवी डर गई। वो घबरा कर पीछे हटने लगी तो शान का ध्यान उसके डरे सहमे से चेहरे पर गया। उसने खुद को शांत किया और आराम से बोला, उसका जो करना होगा मैं देख लूंगा, तुम घबराओ नहीं। और बताओ मुझे, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? आरवी अब खामोशी से उसकी आंखों में झांकती रही, जहां अब गुस्सा नहीं बल्कि उसके लिए परवाह नजर आ रही थी। जब आरवी को विश्वास हो गया कि अब वो उस पर गुस्सा नहीं है, तो उसने धीरे से कहा, नहीं, वो जबरदस्ती कर रहा था, पर फिर बाहर से किसी आंटी के चिल्लाने की आवाज आने लगी तो वो मुझे बाद में देखने का बोलकर बाहर चला गया था। मैंने आवाज सुनी थी, बाहर से उसकी किसी आंटी के साथ बहस होने की आवाज आ रही थी। आंटी उसे रोक रही थी कि मुझे वापस जाने दे, मैं किसी और की वाइफ हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करे, पर उसने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें वहां से लेकर चला गया। आंटी चिल्लाती रही, फिर मुझे उनकी आवाज आना बंद हो गई, फिर मुझे आपकी आवाज आई। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, आप तो नफरत करते हैं, फिर आप क्यों आएंगे मुझे बचाने? मैंने आपको आवाज भी दी थी पर आपने जवाब नहीं दिया। नीचे से विहान की आवाज आ रही थी। उसके कुछ देर बाद ही दरवाजा एक बार फिर खुला तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो फिर से आ गया और अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहते हुए आरवी सुबकने लगी, फिर खुद को संभालते हुए रूंधे गले से आगे कहना शुरू किया, पहले की बात और थी, उसने जो मेरे साथ किया मैं सह गई, क्योंकि तब मुझे होश नहीं था। जब होश आया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हर बात मानने को राजी हो गई, पर फिर भी उसने मुझे शादी के दिन बेइज्जत करके छोड़ दिया। वो मुझसे बदला लेना चाहता था, उसे लगा कि मैंने उसे चीट किया है। शादी उससे कर रही थी पर चक्कर आपके साथ चल रहा था, इसलिए वो मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहता था। मुझे बाद में पता चला कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। उसने सब नाटक किया सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। आज भी उसने जो किया मुझे आपसे दूर करने और अपनी हवस मिटाने के लिए किया था। जब दरवाजा खुला तो मुझे लगा कि अब मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। आपके अलावा किसी को अपने करीब आने का हक कैसे दे देती जब मेरे दिल में बस आप बसे थे। खुद को उससे बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी पर उसने मुझे भागने नहीं दिया। मेरे हाथ बांध दिए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि वो मुझे छुए उससे पहले मैं खुद को खत्म कर लूं। आपको धोखा कैसे दे देती पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मैं बेबसी से अपनी ही आंखों से अपनी इज्जत को लुटते देख रही थी। मुझे लगा आप सब खत्म हो गया पर जाने कहां से पर आप मेरे पास आ गए मुझे उस राक्षस से बचाने। आपको देखकर मैं इतना खुश हुई थी पर फिर अपनी हालत देखी तो लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। आप तो पहले ही मुझसे नफरत करते थे अब तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे ना। वो एक बार फिर रो पड़ी। शान ने उसे ऐसे रोता देखा तो उसे झटके से अपने सीने से लगा लिया। आरवी उसके सीने पर से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचे जोर जोर से रोने लगी तो शान ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा नफरत नहीं करता मैं तुमसे मैं तो तुमसे। शान भावनाओं में बहते हुए वो कहने जा रहा था जो उसे नहीं कहना था और इन वक्त पर उसको एहसास हो गया कि वो क्या कहने जा रहा। शान बोलते बोलते अचानक ही चुप हो गया तो आरवी सर उठाकर भीगी निगाहों से उसे देखते हुए बोली नफरत नहीं करते आप मुझसे तो क्या करते हैं।
शान अब तक खुद को संभाल चुका था। उसने आरवी को खुद से अलग कर दिया और रोष भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला मैं तुमसे नहीं तुम्हारे वजूद से नफरत करता हूँ। जानता हूँ कि तुम कहीं भी गलत नहीं हो ना ही तुम मुझे धोखा दे रही हो फिर भी मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता पर मेरी मजबूरी है कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मुझे तुम्हें झेलना होगा ध्यान रखना होगा तुम्हारा और मैं बस वही कर रहा हूँ। एक झटके में शान ने पूरी बात ही पलट दी। अपने प्यार और परवाह को स्वार्थ का जामा पहनाकर उसके सामने पेश कर दिया। उसकी कोमल मन को जो पहले ही आहत था उसे अपने शब्द रूपी तीखे बाणों से भेद दिया। आरवी की आंखें छलक आईं। उसने रूंधे स्वर में कहा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे मुझे बताइए तो सही आखिर मेरा कसूर क्या है। सालों पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं तो तब इतनी बड़ी भी नहीं थी कि समझ पाऊं कि क्या हुआ कैसे हुआ किसने और क्यों किया। फिर सजा मुझे क्यों? बस इसलिए क्योंकि मेरी रगों में उस इंसान का गंदा खून बहता है जिसने सालों पहले आपको वो जख्म दिए जो आज तक भी भर नहीं पाए जिसने मेरी ही माँ को चीट किया और जिसके वजह से मुझे अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिसके वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। या मैंने उनकी तरफदारी की इसलिए आप मुझसे बदला ले रहे हैं। मैंने तो वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर आपको मेरी बातें ठीक नहीं लगी तो आप वही मानिए जो आज तक मानते आए हैं। मैं अब इस मामले में कभी कुछ भी नहीं कहूंगी। मान लेती हूं मैं कि आपको जो लगता है सब सच है। ठाकुर साहब गुनाहगार हैं आपके और आपके परिवार के पर इन सब में मेरी क्या गलती है मैंने क्या किया है जो आप सजा मुझे दे रहे हैं। हाँ मानती हूँ मुझे जन्म देने में उनका भी हाथ था उन्हीं का खून हूँ मैं पर माँ बाप को बच्चे तो नहीं चुनते भगवान चुनते हैं तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। उनकी बेटी हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हीं की तरह धोखाबाज हूँ। मेरे अंदर खून भले ही उनका है पर संस्कार मेरी माँ के दिए हुए हैं जिन्होंने गलत होने पर अपने पति को और उसके घर को छोड़ा पर कभी अपना पत्नी धर्म निभाने से पीछे नहीं हटी। मुझे उन माँ बाप ने पाला है जिन्होंने मुझे गलत को गलत और सही को सही कहना सिखाया है। मेरी परवरिश उन्होंने की है जो बहुत अच्छे इंसान हैं और उससे भी अच्छे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे रिश्तों को दिल से निभाना सिखाया है। क्यों नहीं देना चाहते मुझे एक मौका? यही सोचते हैं ना कि मैं आपको चीट करूंगी पर मैं नहीं हूं ऐसी। एक बार तो मुझ पर विश्वास करके देखिए मैं मरते दम तक आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगी। बस एक बार मुझे अपने दिल में जगह दे दीजिए मैं इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं मांगूंगी और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मार दीजिए मुझे। मुझे अपने पास एक ट्रॉफी की तरह रखना चाहते हैं ना दिखाना चाहते हैं अपने दुश्मन को कि आप जीत गए पर इस जंग में मैं मेरा प्यार सब तो हार गया फिर क्या मोल है इस जीत का। तकलीफ उन्हें देना चाहते हैं इसलिए मुझे दर्द दे रहे हैं ना पर आप भूल गए उनकी बेटी के साथ आपकी वाइफ भी हूं मैं और आप उनकी बेटी को नहीं अपनी वाइफ को बेइज्जत करते हैं। आप अपनी बेरुखी से उनकी बेटी को नहीं अपनी वाइफ को तकलीफ पहुंचाते हैं उसके दिल के टुकड़े करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस कदर टूट जाऊं कि बाद में आप चाहते हुए भी मुझे जोड़ ना सकें और खुद से दूर करते करते मुझे खुद से इतना दूर कर दें कि मैं दोबारा कभी आपके आसपास नजर तक ना आ सकूं। आज मेरे चेहरे से आपको नफरत है कहीं ऐसा ना हो कि कल को इस चेहरे की एक झलक देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाएं। टू बी कंटिन्यूड।
आगे की स्टोरी में अब धीरे धीरे सभी राजों पर से पर्दा उठने वाला है। जल्दी ही ये नफरत खत्म होगी और शुरू होगा आरवी और शान के प्यार का सफर। साथ ही आपकी सभी शिकायतों को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दिल थाम कर आगे के पाठ पढ़ें और समीक्षा देना ना भूलें।